हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईवा टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते बात करते हैं आपसे बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना बहुत 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 मैंने 3 बार लगाया बिकॉज एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की। और ये वो फाइनेंस नहीं है जो टिपिकल ओवरऑल फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, ये वो फाइनेंस है जो एक स्टार्टअप में या एक SME में फ्यूल की तरह काम करता है। एंड आज हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ करमरकर। सिद्धार्थ का जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। इन्होंने अपना करियर शुरू करा था अमेरिकन एक्सप्रेस से, देन ही मूव टू HSBC, JP Morgan एंड Edelweiss उनका लास्ट कॉरपोरेट असाइनमेंट था। एंड अब सिद्धार्थ एक एंटरप्रेन्योर हैं खुद भी, और अब जबकि वो सेम बोर्ड पे हैं तो शायद हमारी ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकें। वेलकम टू द शो सिद्धार्थ।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
सो सिद्धार्थ, हमें ये बताइए कि जब एक आइडिया एक स्टार्टअप के तरीके से जब उभर के आता है और उसके बाद फिर SME में कन्वर्ट होता है और फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो IPO तक जाता है और एक बहुत बड़ा जाइंट हो जाता है, तो इसमें ये जो जर्नी होती है, ये सफ़र होता कैसा है और कैसे उसको एक सक्सेसफुल सफ़र बना के चला जा सकता है?
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया वहाँ पे, सफ़र। सो सफ़र SUFFER भी हो सकता है, कईयों को SUFFER भी होता है और कईयों को SAFER भी हिंदी का सफ़र हो जाता है।
राइट।
आप अगर देखोगे कि 100% में से जो कल्पनाएं जो उभर के आती है, उस कल्पनाओं में सिर्फ 2% कल्पनाएं उस मकाम पे पहुंच पाती है जो मकाम की आप बात कर रहे हो।
ट्रू ट्रू।
बहुत से ऐसे 98% जो केसेस होते हैं वो 98% केसेस बीच में कहीं पे खो जाते हैं, और वो 98% केसेस शुरू तो इस
जोश के साथ
होते हैं कि हम उस मकाम पे ले जाएंगे, हमारी रचना को उस हिसाब से लेके जाएंगे, पर वो क्यों गिरते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज होती है जो 98% को 2% पे कन्वर्ट करें, वो होती है नियम। और नियम होगी आपकी क्लाइंट्स मैनेजमेंट में नियम होना चाहिए, आपके पॉलिसी और प्रोसेस में नियम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सबसे अच्छा नियम लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
बहुत समझदारी की बात जैसे कि आपने बताई। हालांकि ये देखने में बहुत सरल और सिंपल लगता है कि नियम, somebody is talking of discipline, बट मैं शायद उस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज़ मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। हम शुरू तो बहुत जोश में करते हैं, हमारा अकाउंट्स ऐसा होना चाहिए, हमारा मार्केटिंग ऐसा होना चाहिए, वी शुड हायर, इतने लोग हायर करने चाहिए, हमें इतने अकाउंट मैनेजमेंट में जाने चाहिए। लेकिन जब शुरुआत होती है, किसी ने बहुत खूब कहा था कि एक जो रेसलर होता है ना, वो बहुत प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन तभी तक जब तक रिंग में उसको पहला पंच नहीं पड़ता है। सो कहीं ना कहीं हमारे एंटरप्रेन्योर्स की भी हालत वैसी ही होती है। सो जैसा कि आपने बताया कि नियम जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लंबा सफ़र तय करने के लिए, लेकिन उसके पहले हमें एक फाइनेंस के एंगल से हमें आप ये बताइए कि जब हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो फाइनेंस, बिकॉज वहाँ पे जो सबसे बड़ी किल्लत होती है वो होती है फाइनेंस की, पैसा ही नहीं है और हम तो पैसा कमाने ही आए हैं, लेकिन वो करें कैसे?
बिल्कुल, और ये दिक्कतें आती है, सबको ही आती है, ये ऐसे नहीं कि कोई स्टार्टअप को ही आती है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आती है।
राइट।
और फाइनेंस एक ऐसा विषय है कि उसकी आप जितना डीपली आप उसको प्लान करो और डीपली प्लानिंग के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, उस पर आपकी सक्सेस उस पर निर्भर होती है। सो आप जैसे आपकी जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी कल्पना है, उस कल्पना को जिस हिसाब से आप अगर प्लान करते हो, उस हिसाब से आपको सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए कि हम अपने पैसों की भी प्लानिंग उसी विषय पे करें।
ओके।
पैसों की प्लानिंग, अब अगर बड़ी कंपनियों की बात की, जैसे आपने मुझे कहा, आपने बताया कि मेरी कंपनीज जो है जहाँ पे मैंने काम किया है 150 साल पुरानी कंपनीज हैं, उनका बजट और उनका प्लानिंग ये साल के 3-4 महीने पहले से शुरू होता है अगले साल के लिए।
ट्रू।
और फिर हर महीने उनकी ट्रैकिंग होती है, हर 3 महीने के बाद उसके फोरकास्ट बनते हैं, हर 6 महीने के बाद उसकी रिव्यू हो जाती है, और हर 3-4 महीनों के बाद उसका रिव्यू लिया जाता है कि हमने क्या शुरू किया था, क्या हमने सोचा था, उसके लिए पैसे हमने कितने साथ में रखे थे, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, और उस पैसों का हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और पैसों का इम्प्लीमेंटेशन कौन से डिपार्टमेंट में कितना होना चाहिए, कौन से इन्वेस्टमेंट में कौन सा कितना पैसा लगना चाहिए, इसकी प्लानिंग, ये आपके जैसे विचार, आपके जैसे एक्साइटमेंट में खड़े होते हैं उसी विचारों में आपकी वो भी प्लानिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं 98% लोग जो नहीं पहुंच पाते वो इस विषय को इतना ध्यान नहीं देते, वो नजरअंदाज कर देते हैं।
ओके, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक उदाहरण मान लीजिए कि सपोज राजीव को एक फार्मा कंपनी शुरू करनी है
जी।
सो एक फार्मा कंपनी शुरू करनी है मतलब उनको, उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करके सामान बेचना शुरू करें, दवाइयां बेचना शुरू करें, या तो वो किसी से दवाइयां लें और उसके बाद आगे बेचना शुरू करें
जी।
सो ये एक नाइव काइंड ऑफ एक एटमॉस्फेयर है जहां पे कुछ भी नहीं है उनके पास
जी।
तो उनको किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए
जी? सो सबसे इम्पोर्टेंट है एक, जो दोनों बिजनेसेस जो आपने बोले वो थोड़े फार्मा से रिलेटेड है पर अलग अलग रचनाएं अलग है उन दोनों बिजनेसेस की। अगर मैन्युफैक्चरिंग देख लें तो उस, इट्स अ वेरी हेवी इंटेंसिव कैपिटल।
ओके, देन इन दैट केस लेट अस ड्रॉप मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज राजीव के पास उतने पैसे नहीं है।
ठीक है, सो अगर ट्रेडिंग में आप बात करो तो एक्साइटमेंट में क्या होता है, स्टार्टअप्स पहले जाके 10 लोगों को हायर करो, दो मार्केट में बिजनेस सेटअप करो और वो एक्साइटमेंट में आइडिया बहुत अच्छी हो, भले आइडिया बहुत अच्छी हो बट आपका अगर फाइनेंशियल नियम उस पर अगर आप ठीक नहीं हो तो आफ्टर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स आपको वो कहीं ना कहीं पिंच होने शुरू हो जाता है। और वो पिंचिंग जो होती है वो आप पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पिंच मुझे 6 महीने में आएगी, 8 महीने में आएगी या 12 महीने में आएगी। और उसके लिए आपको आपको आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से कैसल करना, आपकी कंपनी के फोरकास्ट बनाना, आपकी कंपनी की सोर्स ऑफ फंड्स को आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है वो कैलकुलेट करना, रेंटल कितना जाएगा वो कैलकुलेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माल कहाँ से आएगा, आपका आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होगा, आपकी क्रेडिट पीरियड कितनी होगी, ये जो क्राइटेरिया है, ये रेशियोज हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जिसके ऊपर आपको बहुत डीपली आपको विषय पे आपकी पहली आपकी नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आपका एक रचना आपकी तैयार हो गई, उस रचना को आपको आपके विचार और आपका जो विषय है उस विषय को आपके उस रचना के ऊपर आपको ओवरले करके बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
ओके, अभी एक कदम उससे और जाते हैं। नाउ राजीव ने ये सोचा कि उनको एक फार्मा कंपनी शुरू करनी है, कहीं से भी कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने पूंजी लाई और उसके बाद एक एक कंपनी उन्होंने बनाई, कुछ लोगों को हायर किया, दवाइयाँ ली और उसके बाद फिर उन्होंने मार्केट करना शुरू करा और उसके बाद काम करना शुरू किया, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर सप्लाई चेन भी, अब करीब 6 महीने हो चुके हैं, राजीव का बिजनेस ओके है। बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री में आजकल जब भी आप स्टार्टअप होते हैं ना तो सब लोग पहले तो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं सारे लोग, दूसरा सब लोग आपको स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो फला कंपनी जो है 3 महीने का क्रेडिट दे रही है, आप मेरे को 6 महीने का क्रेडिट दो या 100 डेज का क्रेडिट दो तो हम आपसे बिजनेस करेंगे
जी।
सो ऐसा करके अभी किसी तरह से राजीव ने जो है कंपनी चलाना शुरू करी और कंपनी एक ओके काइंड ऑफ शेप में पहुंच गई है। अब राजीव को क्या करना चाहिए सो दैट वो स्केल अप कर सकें
जी? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये सवाल हर एक को आता है कि मैं इस विषय इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं कैसे मैनेज करूं, कि अभी मुझे कोई मुझे वॉल को पुश कर रहा है, कोई मेरा हाथ खींचने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं मेरे जेब पे उसका असर पड़ रहा है
बराबर,
और वो असर को मैं कैसे रिलैक्स करूं, उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। और वहीं पे चीज आती है कि आप कितना दूर की आप सोच सकते हो, आपकी मार्केट की नॉलेज कितनी है, आपके आसपास के आपके क्लाइंट्स, आपके सप्लायर्स आपसे कैसे जुड़े हैं, ये विषय आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा।
ओके,
आपके आपको इस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी वैसे ही रचना आपकी होनी चाहिए कि आगे चल के अगर ये मेरे सप्लायर्स के साथ ऐसे हुआ तो मेरा कितना पैसा बर्न होगा इस पर्टिकुलर विषय पे, और वो आपकी बैकअप उसकी क्या है। सो प्लान बी आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए कि प्लान ए में अगर मुझे 15 दिन या 20 दिन के बजाय 3 महीने के बाद अगर मेरे पास पैसे आए तो 3 महीने मैं कैसे गुजारा करूं। ऐसे कभी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग अगर गलत हो गई तो आपके स्टाफ पे इंपैक्ट पड़े, क्योंकि आपके बेसिस पे, आपके कंपनी के बेसिस पे आपका स्टाफ जुड़ा है। सो हमेशा स्टार्टअप को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिवाय मेरे सिवाय मेरे पास साथ जो जिन्होंने मेरे ड्रीम में चलने का जिन्होंने सपोर्ट किया है उनको आप सपोर्ट करो।
राइट,
और सबसे पहले आता है स्टाफ का पैसा, फिर आता है कंपनी का पैसा। सो प्लानिंग उस हिसाब से होनी चाहिए कि कभी भी मेरा स्टाफ का पैसा इंपैक्ट ना हो, क्योंकि स्टाफ इज योर, दे आर योर ब्रांड एम्बेसडर्स एंड दे आर योर स्ट्रेंथ।
राइट, अभी एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में लागू होता है, आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे उस चीज से। लाइक एक साल कंपनी चली, उसके बाद फिर कुछ एक इन्वेस्टमेंट हुआ या कुछ एक कहीं से पैसा नहीं आया या टाइम पे रोलिंग नहीं हुआ, देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जीएसटी भरना है, टीडीएस भी भरना है, सारे कंप्लायंसेस भी करने हैं, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है आपके। इस प्रोसेस में कई जगह पे पैसे अटक जाते हैं, मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, रोटेशन में पैसा नहीं आ पा रहा है
जी।
इस चक्कर में लोग शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं
जी,
ठीक है। वो लोन लिया, उसके बाद फिर अब वो एक और लायबिलिटी हो गई, उसका इंटरेस्ट आने लगा, फिर उसकी भी एक ईएमआई हो गई
जी,
ठीक है। फिर आपने, आपको लगा कि चलो लोन ले लिया, अब हमने, अब लोग हम और हायर करते हैं, मैं बहुत कॉमन सी चीजें बता रहा हूँ
जी,
सो दैट आप जैसे एक्सपर्ट का ओपिनियन उन चीजों पर लिया जा सके
जी।
और जो गलतियां लोग ज्यादातर करते हैं वो गलतियां रिपीट ना हो
जी।
सो ये एक ट्रैप होता है, मतलब एक बार आपने लिया ना, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद आपको लगता है, मान लीजिए कि अगर आपको लगता भी है कि चलो ठीक है मेरा काम चल रहा है, बैंक से फोन आएगा, सर टॉपअप है लेके क्या, अभी सर को सपने आ गए यार, हम लोग ना एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, फिर वो सारा एक ट्रैप है जो मैंने देखा है ना। इन चीजों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे, क्या सही तरीका है
जी? सो सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि लोन ये बुरी चीज नहीं है। लोन ने जितनी पॉपुलेशन में जितनी नौकरियां क्रिएट की उतनी शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इतनी क्रिएट नहीं की होगी। लोन ने जितने व्यवसाय क्रिएट किए उस, दैट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट।
ओके,
अगर एज अ बैंकर इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। सो लोन से आप डरो मत, पर लोन कहाँ पे कैसे यूज हो, अगर मैं 8% या 10% 12% पे मैं अगर लोन उठा रहा हूँ, मुझमें इतनी वो डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि मुझे वहां से 15% तो मिले या 2% या 3% ज्यादा मिले, क्योंकि वो 2-3% में आपका स्वास्थ्य, आपका पेशेंस, आपका स्टाफ, ये सारा वो 2-3% में आएगा। आपकी कंपनी की रचना, आपकी कंपनी का रोज का देखभाल, ये 2-3% के स्प्रेड में आता है। सो आपकी डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स शुड नॉट बी टुवर्ड्स सर्विसिंग एनी अदर लोन।
ओके,
योर डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स ये आपको बिजनेस के ही ग्रोथ में अगर लगाना हो तो आप लोन ले लीजिए।
Okay.
अगर लोन को लोन के रिपेमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप डबल डेट में जा रहे हो, क्योंकि फिर आपको एक तो ये लोन उसका रिपेमेंट, तो वो लोन फंड करने के लिए दूसरा लोन, और फिर जल्दी ही आपको ऐसे पता चलेगा कि मेरे पास लोन ही है और लोन को सर्विस करने के लिए मैं और लोन ले रहा हूँ, और कुछ टाइम के बाद बैंक से भी बंद कर देगी, एनबीएफसी दरवाजे बंद कर देगी, और फिर आप बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हो। सो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को कि लोन पे करने के लिए आप दूसरा लोन ले लीजिए, पर अगर आप लोन लेते हो तो उसका इस्तेमाल इस हिसाब से कीजिए कि आप वो सिचुएशन में कभी ना आए।
ओके, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है मेरे मन में उठता है कि देखिए, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ये सोच के लोन लेता नहीं है या ये सोच के कभी नहीं चलता है कि मतलब ऐसी नौबत आएगी, बट कभी कभी हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हर स्टार्टअप्स को या हर एसएमईस को फंडिंग लेना चाहिए? फंडिंग, लोन एंड इन्वेस्टमेंट एंड ये जो चीजें होती हैं, प्राइवेट इक्विटी, ये कैन यू प्लीज थोड़ा एलैबोरेट करेंगे इसके बारे में?
सो ट्रेडिशनली इंडिया में हम या तो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, सबसे सोर्स ऑफ फर्स्ट फंड्स इज पेरेंट्स, सेकेंड सोर्स इज सेविंग्स, जो हमारी सेविंग्स होती है, थर्ड सोर्स इज लालाज एंड दोस्त, जिनके पास पैसे होते हैं और हम उनके पास जाते हैं बोलने के लिए हमारी आइडिया देखो बहुत अच्छी है, उनको थोड़े पैसे दे देते हैं, अगर कोई और अच्छा हो और पढ़ा लिखा वेंचर कोई निकाले तो वो जाएगा एंजल इन्वेस्टर्स के पास, पर उसकी वो प्रेजेंटेशन वैसी होनी चाहिए, उस मकाम पे होनी चाहिए कि एंजल इन्वेस्टर्स पैसे डालें। हर एक स्टेज पे अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या तो इक्विटी में हो सकती है या डेट में हो सकती है।
ओके,
कोई भी अगर कोई वेंचर करने जाए, कोई स्टार्टअप हो, उसको पहले तय करना चाहिए कि मैं कौन से सोर्स का फंड किस चीज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ।
ओके,
माने अगर मेरे पास 100 रुपए मेरे जेब में है तो मैं क्या पूरे 100 रुपए डाल रहा हूँ मेरे बिजनेस में, उसमें से मैं 60 रुपए ही डाल रहा हूँ, 60 रुपए में डाल के क्या मैं 10 रुपए और कमाऊं और वो 10 रुपए वापस मैं बिजनेस में डालूं, वो एक चीज हो गई।
मतलब ये बहुत बहुत उम्दा चीज आपने बता दी, इसे फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे रिलेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
तो वो एक ट्रैप हो जाता है थोड़ी देर के बाद कि अगर मैं अगर मेरे पैसे ही जलाने शुरू कर दूं तो, और ये अगर मैं पैसे उसमें से निकाल ना पाऊं तो फिर क्या होगा मेरे बिजनेस का। सो उस डर एक कहीं पे होता है, वो इनकॉन्फिडेंस कह लो उसको, वो शॉर्ट ऑफ प्लानिंग कह लो उसको, और उस शॉर्ट ऑफ प्लानिंग और इनकॉन्फिडेंस की वजह से वो एंजल इन्वेस्टर्स के लिए ढूंढने में मार्केट में जाते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स आर शार्प, दे नो हर एक बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा. उस हिसाब से एंजल इन्वेस्टर्स फिर उस हिसाब से इक्विटी मांगते हैं. आपको आपकी कंपनी में कुछ महीनों के बाद लगेगा आप उनके लिए काम कर रहे हो ना कि अपने खुद के लिए काम कर रहे हो. बुरा नहीं है कुछ भी. एंजल इन्वेस्टर्स आर बाय द नेम इटसेल्फ दे आर एंजल्स. आपके ड्रीम में वो सहायता करते हैं आपकी आपकी ड्रीम को अच्छे स्तर पे ले जाने की. और कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जहाँ पे हमने देखा है एंजल इन्वेस्टर्स ने वो कंपनी को बहुत आगे लेके गए हैं और सपोर्ट भी करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स. पर मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी ऐसे सिचुएशन में मत जाना कि कहीं रात को फोन आ जाए कि कल मेरा पैसा वापस दे दो. वो मुश्किलों में पड़ जाएगा, वो बिजनेस मुश्किल में पड़ जाएगा और फिर वो पैसे देने के लिए आप कुछ ऐसे कर बैठोगे जो आप नहीं करना चाहते. आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में वो नहीं है. सो आपकी रचना और आपका नियम जो आपके शुरू में आपने लिखा है कि ये महीने में मुझे ये यहां तक जाना है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे. सो सजेस्ट मैं ये करूंगा कि जितने फंडिंग आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप कर सकते हो उतने फंडिंग आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कोशिश कीजिए करने की, ना कि नॉन इंस्टीट्यूशनल वे. क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल वे में आप शायद ऐसे हो सकता है किसी की मुसीबत आ गई, किसी को पैसों की जरूरत पड़ी और आपके दरवाजे पे वो खटखटाए और शायद आपके पैसे कहीं पे लगे हो, आप वहां से निकाल नहीं पाए, फिर वो मुश्किल में आप आ सकते हो. सो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि हमेशा लाला या पिताजी माताजी या अपने खुद के पैसे यूज करो. आप डेफिनेटली आप बाहर से इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी ले सकते हो और वो मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो सकता है.
सो ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होती क्या है और कैसे आती है, बिफोर दैट मैं आपसे ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा मेरे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है और ये प्राइवेट इक्विटी फंडिंग क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट है.
एक होता है एंजल इन्वेस्टर.
ओके.
एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपके शुरू के दिनों से आपके साथ होते हैं.
अच्छा.
तो अगर आपने 100 रुपये लगाए हों और आपको उसको 200 करने हैं और 200 आपके हो नहीं पाएंगे जब तक आप ज़्यादा पैसा ना डालो.
यस.
और शुरू के दिन है आपके, शुरू की यू नो स्ट्रगल है, उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं आपको पैसा ज्यादा देते हैं.
ओके.
और उस पैसों में वो आपके कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाते हैं.
अच्छा.
पर वो हिस्सेदार आपके उस वैल्यूएशन पे बनते हैं जो वैल्यूएशन बहुत कम लेवल पे हो क्योंकि आप बहुत नए हो.
एक एग्जांपल देंगे आप?
एक एग्जांपल देता हूं. अगर मैंने कंपनी स्टार्ट कर ली और सपोज 10,000 रुपए में कंपनी स्टार्ट कर ली, 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए और 10,000 में अगर मुझे एंजल इन्वेस्टर चाहिए और मेरा सेल हो रहा है सपोज से 1,00,000 रुपए, जस्ट एज्यूम मेरी वैल्यूएशन उस हिसाब से होगी कि अगर मैं 10,000 लगाता हूं तो मैं 1,00,000 रुपए कमा सकता हूं.
ओके.
पर अगर मुझे 2,00,000, मेरी हैसियत ऐसी है कि मैं उसमें 2,00,000 या 5,00,000 भी कमा सकता हूं पर मेरे से सिर्फ 1,00,000 ही कमा पा रहा हूं क्योंकि मैं 2 ही लोग रख रहा हूं. सो एडिशनल 5 लोगों को रखने के लिए मुझे पैसा और डालना पड़ेगा पर वो पैसा आज मेरे पास है नहीं.
नहीं है.
इसलिए एंजल इन्वेस्टर जब अगर वो 1,00,000 के सेल्स के वैल्यू पे जब आएंगे, एंजल इन्वेस्टर्स आपके इक्विटी में 80% to 90% हिस्सेदारी मांगेंगे.
ओके.
कि हम आपको अगर ज्यादा पैसा दे रहे हैं अभी इस वक्त पे आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए सो आपको हमें ज्यादा स्टेक देना पड़ेगा.
ओके.
क्योंकि हम आपकी मदद उस वक्त कर रहे हैं जब आप कोई नहीं हो. वेंचर कैपिटलिस्ट ये आपको बाद में आ सकते हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर की नेक्स्ट सीढ़ी होती है.
ओके.
जो आपको सीरीज वाइज फंडिंग करती है.
अच्छा.
आपके एंजल इन्वेस्टर्स होंगे ना होंगे उससे वेंचर कैपिटलिस्ट को फर्क नहीं पड़ता.
ओके.
अगर एंजल इन्वेस्टर्स हो आपके कंपनी में तो एंजल इन्वेस्टर्स भी वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकते हैं. वो भी सीरीज लेवल ABCD अलग सीरीज में आपकी फंडिंग कर सकते हैं. वैल्यूएशन जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ेगी उस अलग अलग वैल्यूएशंस पे आपको वो कंपनी में इन्वेस्ट करते रहेंगे, कंपनी में पैसा लाते रहेंगे.
सो अभी जैसे मान लीजिए कि राजीव को राजीव का बिजनेस अभी 10,00,000 का है पर मंथ, उसकी जो सेल है 10,00,000 है और राजीव को बिजनेस करना है 1,00,000 का. ठीक है. एंड वो 10,00,000 से 1,00,000 पहुंचने के लिए राजीव को से 50,00,000 की ज़रूरत है एंड आप वो एंजल इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे कैसे उसको सेगमेंट करेंगे, आप कैसे उसका वैल्यूएशन करेंगे एंड कैसे उसको हेल्प करेंगे. एंड और एक केस है जब जहाँ पे आप एंजल इन्वेस्टर हैं और दूसरा केस है जहाँ पे आप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, तो आप इस चीज़ को मेटरलाइज कैसे करेंगे?
जी बिल्कुल. सो अगर मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ तो राजीव जी के मैं बैलेंस शीट को देखूंगा, उनकी स्ट्रेंथ को देखूंगा, उनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी हो रही है कंपनी की वो देखूंगा और उसकी बुक वैल्यू देखूंगा कि 1 रुपया मैं वहाँ पे लगाता हूँ तो 1 रुपये से मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, उससे मैं बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग कर पा रहा हूँ, प्रॉफिट कितना मैं कमा पा रहा हूँ।
और ये वैल्यूएशन कैसे करेंगे?
थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा वो।
अच्छा।
क्योंकि उसके दो तीन मॉडल्स हैं अलग अलग वैल्यूएशन के भी।
ओके।
और फिर उसके ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ कि इस कंपनी का टोटल वैल्यू कितना होता है आज के दिन में।
ओके।
कि अगर मैं 5 साल के बाद देखूं या 10 साल के बाद देखूं तो ये कंपनी कहाँ जाएगी। उस हिसाब से ये कंपनी अगर उनकी वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है, तो 100 रुपए में मैं अगर 80 रुपए में लेके आता हूँ तो मैं 80% उसका मालिक बन जाता हूँ।
ओके।
भले चाहे राजीव जी को लगे कि नहीं इस कंपनी का 500 मूल हो सकता है आगे चल के, पर इस वक्त पे अगर उस कंपनी का मूल 100 रुपए है और मैं 80 रुपए डाल रहा हूँ तो मैं 80% में उसका हिस्सेदार बन गया।
ओके। और आपका इसमें मतलब कब ये राजीव वापस आपसे ये ले सकते हैं अपना परसेंटेज?
सो जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी,
अच्छा,
राजीव जी को भी पैसे मिलेंगे, उनका शेयर मिलता रहेगा। जैसे जैसे वेंचर इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट अंदर आएंगे,
ओके,
जैसे बाहर की फंडिंग होगी,
अच्छा,
जहां सेल्स बढ़ जाएगा, राजीव जी अपने खुद का सैलरीज बेनिफिट्स अलग अलग तरीके से उनका बेनिफिट भी कर सकते हैं, अपना खुद का मैनेजमेंट फीस ले सकते हैं।
अच्छा।
और उस हिसाब से वेंचर कैपिटलिस्ट जब आएंगे तब अगर वैल्यूएशन कंपनी की 200 या 500 हो गई आगे चल के, तो 200-500 के ऊपर अगर 80 रुपए कोई लाता है 200 के ऊपर तो वो 80% नहीं होता, वो 40% लेके आता है।
ओके।
अगर 500 के ऊपर कोई 80 लेके आता है तो वो 16% के ही वैल्यूएशन पे आता है।
ओके।
सो राजीव जी अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक उसको बेचते रहेंगे पूरे टाइम पे, और राजीव जी उस हिसाब से पैसे कंपनी में भी लेके आएंगे और अपना वैल्यूएशन भी बढ़ाते रहेंगे कंपनी का।
तो वो जो एंजल इन्वेस्टर था उनका क्या हुआ?
सो एंजल इन्वेस्टर की वैल्यू वैसे ही बढ़ गई जो उन्होंने 80 रुपए पे लगाई थी, 80% उनको जो मिला था। अगर कोई 200 रुपए के वैल्यू पे उनसे अगर 40% मांग रहा है तो उनका सिर्फ हार्डली कुछ पैसे उनके जा रहे हैं और स्टेक बहुत कम जा रहा है पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है।
सो इसमें एक बहुत बड़ा जो मैंने कई जगह पे एक्सपीरियंस किया है जो डाइल्यूशन ऑफ स्टेक्स जो होता है,
जी,
फॉर एग्जाम्पल आपने 80% उनकी कंपनी में लिया है, उनके पास 20% है
जी।
अभी सेकेंड राउंड फंडिंग है या थर्ड राउंड फंडिंग है वॉट एवर, तो आप क्या ये मतलब जो डाइल्यूशन होता है क्या वो ऐसा होता है कि मतलब उन सपोज उनका 1 रुपया गया, 1% गया तो आपका 4% गया, ऐसा डाइल्यूशन होता है?
नहीं, ऐसे नहीं होता। जब टेबल पे बात आती है तब बातें अलग दिशा पे और अलग लेवल पे होती है कि कितना परसेंटेज किसका कितना डाइल्यूट करेंगे।
मतलब ये म्यूचुअल चीजें हैं,
ये म्यूचुअल चीजें होती है। ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर आपका 8:2 4:1 के रेशो में हम इन्वेस्टेड है तो डाइल्यूशन भी 4:1 पे ही हो।
अच्छा।
आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको डाइल्यूट नहीं करने हैं शेयर्स।
ओके।
तो आप यू कैन स्टे इन्वेस्टेड एट दैट पर्टिकुलर लेवल एंड द एंजल इन्वेस्टर्स मे आस्क फॉर एन एग्जिट।
अच्छा। तो मतलब अभी मैंने 80 रुपए लगाए, 80% मेरे पास शेयर हैं आपके पास हैं, और आप बोलते हैं कि मैंने इसके अगेंस्ट में इतने पैसे दिए थे, उसका मेरे को इतना चाहिए होगा
जी,
तो मैं एग्जिट करूंगा
जी।
ओके। सो दिस इज हाउ द एग्जिट हैपेंस इन स्टार्टअप्स। अब नेक्स्ट जो लेवल होता है, लाइक यू नो नाउ राजीव की जो कंपनी थी वो 10 लाख की सेल्स करती थी, आज वो 10 करोड़ की सेल्स कर रही है। नाउ राजीव की एस्पिरेशन है कि क्यों ना मैं एक IPO फ्लोट करूं और पब्लिक से पैसे लूं और इस कंपनी को और बड़ा बनाऊं
जी,
तो वो क्या प्रोसेस रहता है और कैसे होता है?
सो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो कौन से मकाम पे राजीव जी आए हैं और कितना उनका सेल है, कितना उनका प्रोजेक्शन है और किस चीज़ के लिए उनको पैसे लेने हैं। अच्छा। मार्केट से उस हिसाब से आप SME IPO कर सकते हो।
ओके।
और SME IPO में SME की लिस्टिंग होती है।
अच्छा।
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग होती है, उसमें SEBI और स्टॉक एक्सचेंज के कई नियम है, वो नियम के हिसाब से अगर आपकी कंपनी फिट होती है तो आप SME सेगमेंट में आपका IPO निकाल सकते हो। अगर आप SME सेगमेंट के ऊपर अगर गए और आपको प्राइवेट की पब्लिक करनी है कंपनी को और आपको ए कैटेगरी में अगर लिस्टिंग करनी है तो आप ए कैटेगरी में भी लिस्टिंग कर सकते हो, पर उसके कई नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो नियम होते हैं SEBI के और NSE और BSE के स्टॉक एक्सचेंजेस के।
ओके। सो ये जो पूरा समय काल हमने देखा एक राजीव की जो कंपनी है वो एक आइडिया से कैसे IPO तक पहुंची है, वॉट उसके ऊपर क्या? बिकॉज हम आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे आपने बताया कि आपने कुछ कंपनीज के साथ में काम करा है जो कि 150 साल पुरानी कंपनी थी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा हो नहीं पाता है। सो एक रोबस्ट बिजनेस वो हम कैसे क्रिएट करें फाइनेंशियली? बिकॉज देखिए जो भी हम बोले यू नो कि पैसा मायने नहीं रखता है, ये है चीज़ें वो है चीज़ें, बट फाइनेंशियल फ्रीडम ना बहुत बड़ी फ्रीडम होती है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम को हम खुद कैसे अटेन करें, एंड हमारे आसपास जो हमारे जो स्टाफ है हमारे, क्योंकि आज दो तीन दिन पहले ही मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ मैसेज भेजा था, कोई गुजरात का कंपनी है, उन लोगों ने दिवाली में 600 एम्प्लॉयज़ को कार दी है, ठीक है। नाउ ये एक फ्रीडम टाइप की है ना उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो उस कंपनी के साथ सालों से काम कर रहे हैं। सो ये चीज़ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इस पर?
कंपनी को 150 साल चलाने के लिए
चार जनरेशन लग जाएंगी
और आप एक विरासत से दूसरे विरासत को आप क्या दे रहे हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अपने देश में सबसे ज्यादा जैसे ही पैसा दिखता है लोगों को, जैसे ही पैसा बनते हुए दिखता है, सबसे पहले तो पैसा टूटने के पीछे लोग ज्यादा लग जाते हैं।
मेरा दो
मेरा कितना, मेरा हिस्सा मैं साइड में रखूंगा, मेरी जनता के लिए साइड में रखूंगा। सो आपने अपने देश में एक हायरार्की स्ट्रक्चर जो है, जो विरासत स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे बहुत मजबूत होने की वजह से 150 साल ऐसी कोई कंपनी बहुत मुश्किल से चली है जो 150 साल तक चली। कोई कंपनीज हैं, कई कंपनीज ऐसी हैं जो 150 साल तक चली, जैसे टाटाज हैं फॉर एग्जाम्पल, बिरलाज हैं, दे हैव रन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ मच स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज मैनर। तो उन्होंने विरासत में जब एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को जो विरासत दी वो कंपनी विरासत में दी, ना कि उन्होंने पैसा विरासत में दिया, ना तो उन्होंने शेयर्स विरासत में दिए, उन्होंने पॉलिसीज विरासत में दी, उन्होंने कंट्रोल्स विरासत में दिए, उन्होंने एचआर प्रैक्टिसेस विरासत में दी, उन्होंने क्लाइंट्स विरासत में दिए और प्रोडक्ट्स विरासत में दिए। उन्होंने सिर्फ पैसा और शेयर्स विरासत में नहीं दिए। हम बटोलने जाते हैं कि हमारे पिताजी का पैसा है, हमारे शेयर से हम शेयर्स हमारे लेके जाएंगे और नीचे क्या होगा हमें कोई परवाह नहीं, हम पैसे हैं, ये हमारे शेयर्स हैं, हम उसको जो चाहिए वो कर लेंगे। सो अगर 150 साल कंपनी अगर आपको चलानी है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप कंपनी को देखो। आप कंपनी जिन्होंने ड्रीम, जो आप बोल रहे हो स्टार्टअप की जो ड्रीम है, वो स्टार्टअप की ड्रीम को आप दूसरे ड्रीम आप उस जनरेशन में क्रिएट करो। सो वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से वो वहीं पर आपको 150 साल कंपनी चलाने के लिए नियम का पालन करना बहुत महत्व है।
सो डिसिप्लिन इज वन थिंग जो आज मेरा भी टेक अवे है, एंड थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने बहुत कॉम्प्लेक्स एक सब्जेक्ट को, इतने जटिल सब्जेक्ट को इतनी सरलता से समझाया है। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे समझ में आए तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।
थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू।